نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير Amazed by Allah's small husna, آج ہم اس سیریز میں سے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام القریب دیکھیں گے. قرب، قریب، قرابت، مقرب اور اسی طرح کے بہت سارے نام ہم سب پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں اسی روٹ کے ساتھ. ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کے قرب کو پاتا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ میں اتنا قریب رکھتے ہیں ماں کے کہ ماں ہلے بھی تو بچے کو پتہ چلے, ماں سوئے, ماں جاگے, بچے کو پتہ چل جائے. لیکن کہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت, جس نے ماں دی, جس نے ماں کا پیار دیا, جس نے سب کو بنایا, اگر اس کے قرب کی باتیں ہونے لگ جائیں تو حقیقت ہے کہ دنیا میں نہ ڈپریشن رہے, نہ تنہائی رہے, نہ انسان کبھی یہ کہے کہ میں کس کو سناؤں, میں کدھر جاؤں. اور سب سے بڑی بات ہے دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو جائے, کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں نا, اوپر والا وہ دور ہے نا تو پھر نیچے والوں کو بلا لیتے ہیں. یعنی قریب کے سہاروں کو جھوٹا سہارا بنا کر لوگ اصلی سہارے سے دور ہوتے ہیں. تو آج ہم وہ نام کرنے لگے ہیں کہ جس کا یقین آ جائے اگر زندگی میں تو انسان پورے طریقے سے اس کے ساتھ جڑ جائے اور پھر اس کو اپنا سب کچھ سمجھ لے. اور آپ میں اللہ تعالیٰ کے اس قرب کو پانے کے لیے اگر اپنی ساری زندگیاں بھی لگا دیں اور اس کے بعد ہمیں اللہ کا قرب محسوس ہو جائے تو اس سے بڑا نفع اور کوئی نہیں ہے. دنیا میں ایک انسان کی جتنی بیسکس نیڈز ہیں جو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں, ان سب میں محبت ہے. بچہ چھوٹی سی بات پہ بدک جاتا ہے. کبھی آپ نے کسی روتے بچے کو ماں کے سینے سے لگ کر خاموش ہوتا دیکھا ہونا تو آپ اس نام کو محسوس کریں گے. بچہ ایسے ہی خاموش ہو جاتا ہے. روتا بچہ ماں کے لمس کو پہچان لیتا. کہاں پھر یہ کہ انسان اس ہستی کے پاس ہو ہر وقت, خیالوں میں, ارادوں میں, نیتوں میں, عمل میں. زیادہ سے زیادہ ماں کیا کرے گی اور ماں زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہے, ٹیک کیئر کرتی ہے نا. بچے کے لاش شعور میں ہوتا ہے کہ میں جب روتا ہوں تو یہی عورت سامنے آتی ہے, جب میں ہلتا جلتا ہوں تو یہی مجھے دیکھتی ہے. تو پھر اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اس میں محبت, قربت میں کیا ہے محبت, پھر سیکیورٹی, پھر کیئر, پھر تنہائی کا ختم ہو جانا, پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. ہر انسان کی زندگی میں کئی ایسے لمحے آتے ہیں جس میں اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو سنائے. لوگ کہتے ہیں کہ دکھوں میں سنانے کو دل کرتا ہے, میں کہتی ہوں نہیں, خوشی میں سنانے کو دل کرتا ہے. انسان دکھ, تکلیف, بیماری اکیلے سہ لیتا ہے, کوئی بات نہیں, کسی کو کیا کہوں, چلو خود ہی کرنا ہے, خیر ہے. لیکن خوشی میں دل چاہتا ہے کوئی اور میں اس کو سناؤں. اور کہتے ہیں نا کہ پردیس میں خوشی غم میں ڈھل جاتی ہے, جب کوئی آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. تنہائی اپنی جگہ ایک بہت بڑا عذاب ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب محسوس کر لیتے ہیں اور القریب کی قربت کو پانے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ القریب, قریب بھی نہیں. آپ دیکھیے قریب فعیل کا وزن ہے, قرب سے قریب, اقرب, انتہائی نزدیک, بہت قریب, اور پھر مستقل قریب. یعنی صرف اس لفظ پہ غور کریے گا. اگر ایک لفظ لکھیے قرب, قربت, قرب, سب جانتے ہیں. اب لکھیے قارب, قارب. فعیل کا وزن ہوتا ہے عربی میں, ڈفرینٹ وزن ہے فعیل کے, فعیل. پھر اسی طرح اقرب, اف ال کا وزن, اور قریب فعیل کا وزن. صرف ان تین کو لکھ کر دیکھے نا. قارب کون ہے؟ کبھی آپ کے قریب ہوا اور ختم؟ اس وقت تو نہیں ہے. اقرب اتنا زیادہ کوئی قریب ہوا جتنا کوئی ہو نہیں سکتا, انٹینسٹی ہے اس میں. اللہ نہ قارب نہ اقرب. اللہ کون ہے؟ قریب, فعیل, رحیم, شدید, کیا مستقل. بچہ کیا کرے, ماں اس کو تھوڑی دیر سینے سے لگا کے چھوڑ دے, ماں نے اٹھا لیا تو قارب, ماں سینے سے لگا کے خوب بھینچے, خوب جھنجھوڑے, اقرب. لیکن بچے کو چاہیے ماں کی قربت مستقل, سوتے میں, جاگتے میں, روتے میں, کھاتے میں, ماما, امی. بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا اتنا ماں کے پیچھے پھرتا ہے اور ماں کا بھی دل اسی میں اٹکا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب. اور ماں تو صرف قریب ہو سکتی ہے, مستقل دل رکھتے پھر بھی سوئے گی, واش روم میں جائے گی. آپ نے دیکھا کہ کچھ مائیں واش روم میں جائیں تو بچے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. جتنا کوئی اس کو پکارے ماں نانی, ماں کی جگہ نانی دادی پھپھو خالہ, بچہ نہیں آتا, ماما ماما. اور کبھی کسی کے پاس چھوڑ کر ماں جانے تو لگے, بچے کو ایسے لگتا ہے اس کا جگر چلا گیا. دل قریب وہ ہے جو آپ کے نہایت قریب بھی ہے, بہت قریب بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مستقل قریب ہے. اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قرب کو اگر محسوس کرنا چاہیں نا, تو لکھیے کہ قرب دو طرح کا ہوتا ہے, ایک قرب حقیقی, ایک خاص قرب ہے, اور ایک عام قرب. اللہ سبحانہ تعالیٰ عام قرب کے ناطے سے ہر ایک کے ساتھ ہیں, ہر ایک کی باتیں سنتے ہیں. کیسے؟ تین چیزیں اللہ کی لکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے السمیع ہونا, العلیم ہونا, اور البصیر ہونا. ان تین صفات کے ناطے سے اللہ تعالیٰ عام طور پہ قریب ہے سب کے, سب کی سنتا, سب کو دیکھتا, سب کو جانتا. یہ عام قرب ہوگا. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو خاص قرب میں رکھے نا, تو وہ قرب خاص ہے. یہ ہوتا ہے خاص لوگوں کے لیے, سب سے پہلے انبیاء کرام, پھر نیک لوگ. اور یہ قربت ہوتی ہے معیت کے معنوں میں, ان اللہ مع المتقین, ان اللہ مع الصابرین. یہ خاص ہوتی ہے, اس میں وہ پہلی بھی ہے, وہ نکلتی نہیں ہے. یعنی نیک لوگوں کے ایک ایک عمل کو اللہ خوب جانتا ہے, لیکن ساتھ ایکسٹرا آرڈنری بڑھ کر مدد بھی دینے لگ جاتا ہے. جی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ مدد متقین کے ساتھ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد تھی ہجرت کی رات, اور جو مدد رہی آپ کے ساتھ مکہ میں, اور پھر آپ بدر میں معیت ہوئی. ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ کی یہ معیت لوگوں کو محسوس ہوئی نا. تو آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہیں, آپ کو اتنا اس کا بننا پڑے گا. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کرتے ہیں, فی نفسی ہی, اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے کدھر ہے؟ ساتویں آسمان پہ. ثم استوى الی السماء, عرش کی بات آتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ آسمان پہ ہے, اوپر. تین عالم ہیں دنیا کے, جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین, تو رب العالمین سارے جہانوں کا, سارے عالموں کا رب. سمجھ نہیں آتی, بہت بھی سمجھ لیں تو لوگ کہتے ہیں ایک دنیا کا عالم, ایک آخرت کا عالم, چلیے ایک برزخ کا عالم ہوگا. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے جب دنیا بنی شروع کی, کب ہوئی ہمیں نہیں پتا, بس ہمیں بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ نے دنیا کیسے بنائی. سب سے اوپر اس دنیا میں, سب سے اوپر, ٹاپ 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 ٹاپ, الوف کہہ لیجئے, بلندی, اس پہ عالم جبروت ہے, جبر سے, الجبار. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں, لیکن سمجھنے کے لیے سمجھیے, اور سمجھانے کے لیے سمجھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رہنے کے لیے, اپنے موجود ہونے کے لیے اللہ نے دنیا میں جو جگہ بنائی, اس کو عالم جبروت کہتے ہیں. یہاں صرف اللہ کی پہنچ ہے, فرشتے بھی ادھر نہیں آتے. اس کے آگے ایک نور کی چادر ہے. سب سے پہلے یہ بنی, اسی کے اندر اللہ کا عرش ہے, اور عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ ادھر ہی ہوتے ہیں. یہ ہمارے سمجھنے کی باتیں ہیں, اللہ کے لیے نہیں ہے کوئی مثال, کیونکہ بڑا ڈر لگتا ہے ایسی باتوں کو سمجھتے اور سمجھاتے ہوئے کہ ہم کچھ غلط نہ کہہ دیں. اس کے بعد اس سے نیچے آئیں, یعنی ٹاپ موسٹ یہ ہے, اس سے نیچے آئیں گے نا تو عالم ملکوت ہے, ملک سے فرشتے ہیں. وہاں سات آسمان جو ہے نا, یہ اس کے انڈر آتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں عالم ملکوت میں پہلے آسمان سے لے کے ساتواں آسمان ہے. جی, اور یہاں فرشتے بھی آتے ہیں. یہاں جبرائیل علیہ السلام بھی گئے, اندر سدرۃ المنتہا. پھر اس کے بعد یہاں ہی آپ کہہ لیجئے کہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں جاتی ہیں, اور اسی طرح سے اس جگہ بندے کے اعمال جاتے آتے ہیں. جہاں تک انسانوں یا فرشتوں کی رینج ہے وہ یہی ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں سے نیچے عالم الملک, دنیا, یہ زمین, جہاں بھی کوئی رہتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ رب العالمین. اب آپ اس انالوجی سے ذرا سا ذہن میں یہ تو لائیے, اللہ تعالیٰ بظاہر کتنا دور ہے ہم سے, اتنا الوف. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا ہے. वो कितना 500 साल है, क्या है, वो कौन सा पैमाना है, हमें नहीं पता। वो साल आपके मेरे साल 365 दिनों के साल है, या अल्लाह के यहाँ जो एक साल 50,000 साल का, हमें नहीं पता। जब कभी जाएंगे तो देखेंगे, रूहें जब जाएंगी तो देखेंगी। और खूबसूरत आसमान है, एक आसमान सोने का, हर चीज़ सोने की, एक चांदी की। हजरत अय्यूब पर सोने की टिड्डियाँ बरसी थी आसमान से, तो है ना कहीं रखी हुई वो। सिदरतुल मुंतहा की जो डिस्क्रिप्शन आपको हदीस में आती है, तो पढ़कर तो बेचैन हो जाता है दिल इंसान का कि मुझे तो वहाँ जाना है, मैंने तो वहाँ पहुँचना है। और जो लोग जिंदगियाँ ज़ाया करते हैं ना, मुहासबे नफ्स के बगैर शहवतों में गुजार जाते हैं, उनको जन्नत तो नहीं मिलनी, वो तो एक अलग बात है, उनको ये सारे नज़ारे भी नहीं होने, क्योंकि सूरत अल अराफ में आप पढ़कर आए हैं दौरे कुरान में, ला तुफत्तहु लहुम अबवाब अस्समा, आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाते किन के लिए, इन अल्लज़ीना कफरू वस्तकबरू, कुफर करके आने वाले और तकबर करके आने वालों के लिए। तो वहां वो हस्ती मौजूद है। बात लोग कहते हैं ना, अल्लाह तआला एक तसव्वुर है, एक नूर है, हैवला है, एक फीलिंग है, गलत कहते हैं। अल्लाह के नबी के दौर की तो एक लौंडी इतनी बाशऊर थी कि एक मौके पे लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी ईमान वाली लौंडी है, अगर मैं इसको आज़ाद कर दूं तो क्या वो मेरा कफारा पूरा हो जाएगा, जो किसी भी गुलाम या लौंडी को आज़ाद करने का था। आपने कहा कि इसका इम्तिहान लो। फिर उस लौंडी से पूछा गया, चंद सवालों में से एक सवाल क्या था, ऐन अल्लाह, अल्लाह किधर है। तो उसने हाथ से ऊपर इशारा किया, कहने लगी फिस समा, आसमान पे। फिर आपकी रिसालत का पूछा गया, तो कहने लगी आप अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने कहा जाओ इसको आज़ाद कर दो, ये ईमान वाली है। तो ये जो आज हलूल के नज़रिए और अंदर तू बाहर तू ये और वो, ये बेकार बातें हैं। अल्लाह अपने वजूद के एतबार से ऊपर से ऊपर से ऊपर, मैं आप सोच नहीं सकते। देखिए मैं इस वक्त नॉर्वे में हूँ, आप में से कुछ लोग पाकिस्तान से सुन रहे हैं, कुछ लोग इंडिया से होंगे, कोई इससे भी आगे ले चलें, मेरा बोलना और नेट के थ्रू आप तक मेरी बात जाना, आपको क्या महसूस करा रहा कि मैं आपके करीब ही हूँ। अगर आवाज़ ख़राब ना हो, बीच में कनेक्शन ड्रॉप ना हो, मुझे खांसी आएगी आपको पता लग जाएगा, मुझे स्नीजिंग होगी आपको पता लगेगा, जो मैं बोलूंगी आप सुन लेंगे। जब एक इंसान दुनिया में दूर रहते हुए फोन के जरिए, सैटेलाइट्स के जरिए, गैजेट्स के जरिए कुर्बत महसूस कर लेता है, तो फिर वो तो मालिक है, उसने तो ये सब कुछ दिया। तो अल्लाह अल करीब, दूर रहकर भी करीब है। कभी कभी बच्ची परदेश में होती है, माँ अपने मुल्क में, कोई मुश्किल वक्त आता है, माँ कहती है बेटा फिक्र नहीं करो मैं तुम्हारे पास हूँ। अब वो क्या माँ भला अमेरिका में पहुंच चुकी होती है, नहीं वो इंडिया में होती है माँ, लेकिन उसकी दुआएं उसके साथ होती हैं, उसकी तवज्जो उसकी तरफ होती है। बस इन मिसालों को सामने लाकर इनफिनिट से ज़र्ब दे दीजिए, और फ़इन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई ज़ादान। तो फिर चंद जुमले बोलिए, इतनी बुलंदियों पे होने के बावजूद बिल्कुल करीब, कोई दूसरा इतना करीब नहीं जितना रब करीब है, खुद अर्श पे है, लेकिन अपने इल्म, अपनी समात, अपनी बसारत के एतबार से करीब है। और जब कोई चीज़ करीब होती ना, तो मूमन दुनिया में एक असूल है कि चिराग तले अंधेरा, या जो चीज़ करीब होती है ना, उसकी कदर नहीं करते, दूर की नेकियों के लिए रोते हैं, करीब की नेकियों को पीछे डाल देते हैं, जो नहीं होता उसके लिए तड़पते हैं, और जो सामने बैठा होता है उसकी बात नहीं सुनते। ये इंसानों की कमजोरियां हैं। अल्लाह की बड़ाई और कुर्ब का एहसास बशक वक्त होना चाहिए, यानी करीब होने की वजह से अब उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। वो करीब है इसीलिए आपकी मेरी मदद करता है, रात के अंधेरों में, सफर में, खजर में, बीमारी में, परेशानी में, ऑपरेशन थिएटर पे जो है वो अल करीब है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अल करीब कैसा है, दिलों की बातें जानने वाला। चलिए माँ की बात कर रहे थे ना शुरू में, हम बच्चे को देखा, माँ ने, बच्चा रो रहा है, माँ को पता लग जाता है क्यों रो रहा है, तुक्के लगाती है माँ, इसके पेट में दर्द है, इसको हवा हो गई है, इसको डिकार नहीं आया, इसके दांत निकल रहे हैं, यकीनी बात तो नहीं पता। और चले बड़ा हो जाए बच्चा, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा क्या सोच रहा है माँ को पता नहीं, पता माँ को। अल्लाह ताला अल करीब कैसा है, लैसा कमिस्लिही शैयुन वहुवा समीउल अलीम, दिलों की बातें जानने वाला है। इधर आपके दिल में कोई ख्याल आता है, उधर अल करीब को पता चल जाता है आलमे जबरूत में। और इंसान, जैसे मैंने अभी मिसाल आपको दी कि आप मुझे इतनी दूर से भी सुन रहे हैं ना, गैजेट इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नेट ख़त्म हो जाए अल्लाह ना करे बीच में, तो मेरा आपका रब्ता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चलिए नेट भी मौजूद है, आवाज़ आ रही है, मैं आपसे कहती हूँ पानी दीजिएगा, आप मुझे पानी दे सकते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, अगले सालों में पता नहीं, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कहते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा, जैसे फैक्स आती है या जैसे हज़रत सुलेमान का तख्त था। तो बस इसी को जहन में रखिए, अल्लाह सुबहाना ताला के लिए तो कोई मिसाल देते हुए भी बंदे को शर्मिंदगी होती है कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या ना बोलूँ, कैसे बोलूँ, कैसे ये सारा मामला करूँ। फिर दूसरी बात देखिए, दुआओं को मांगने से पहले ही जानने वाला, ये जो हमने आज एक दुआ को भी एक रस्म और एक छू मंत्र बना दिया है ना, हाथ उठाने सुन्नत है, अदब है, लेकिन हाथ ना उठाए कोई दुआ करे, लोग कहते हैं इसकी दुआ ही नहीं कबूल होनी, गलत बात है। अल्लाह सुबहान तआला की हस्ती आपकी दिल की बातों को पढ़ लेती है, इतना करीब है कि वनाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और आप देखते हैं कि जितना ज्यादा आप अल्लाह के इस नाम के बारे में सोचते जाते हैं ना, आपको महसूस होगा। कोई बात नहीं, माँ नहीं है कोई बात नहीं, शौहर नहीं है कोई बात नहीं, बच्चे नहीं है कोई बात नहीं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। कुरान पाक में ये लफ्ज 3 बार आता है अल्लाह ताला के लिए, और अगर आप इससे मुतल्लिक सलफ सालेहीन के अक़वाल देखें तो हसन बसरी कहते हैं कि सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, हमारा रब कहाँ है? तो उस पर ये आयत सूरह बकरा की 186 नाजिल हुई, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बारे में मेरे बंदे आपसे पूछें तो बताइए कि मैं तो करीब हूँ। तो कुरान पाक में अल करीब कौन है, कहाँ है? सूरत अल बकरा 186, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। बिलागा के एतबार से ये फ्रेज इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, कोई चीज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अरबी ज़बान में कोई भी लफ्ज़ जो मुस्तकबिल में होता है ना, उसके लिए दो लफ्ज़ आते हैं, पहले तो वाओ है ना, वाह, और पीछे से जुड़ा। इज़ा के लफ्ज़ को देखिए, एक लफ्ज़ होता है इज़ और एक होता है इज़ा। इज़ है वेन इंग्लिश में समझेंगे तो, और इज़ा क्या है? वेन एवर। यहाँ वह इज़ा सअलका का लफ्ज़ बताता है जो ही मेरे बारे में कुछ सवाल करेगा, आगे भी देख रहे ना, इज़ा दानी, जब वो मुझे पुकारेगा। यानी इस होता अगर बिलफर्ज यहाँ तो क्या होता, अगर मेरा बंदा मुझे पुकारेगा तो मैं सुन लूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। और यहाँ क्या है, जब कभी अभी पुकारने के लिए लब भी नहीं खोलेगा तो मैं उसके करीब होऊंगा। सअलका इबादी अन्नी, फिर बंदगी की बातें, अब्दियत की बात है, अन्नी में भी एक दुनिया छुपी हुई है, अन्नी। आप सुनिएगा वो लेक्चर, आपको उसमें मिलेगा बहुत कुछ। फाइनी करीब, तो मैं करीब हूँ। आप अगर इस फ्रेज पे गौर करें ना, तो ये जुमला ऐसे भी हो सकता था कि मेरे बंदे जब आपसे मेरे बारे में पूछ दें तो उनको कह दीजिए कि आपका रब करीब है, उर्दू में समझे ना, आपका रब करीब है, नहीं, फ़इन्नी, अपनी तरफ लिया वाहिद मुतकल। देखिए ना, अगर ये कहा जाता कि जब भी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बंदे आके मेरे बारे में पूछे तो उनको कह दें आपका रब करीब है या मेरा रब करीब है, आपका मेरा नहीं, मैं खुद करीब हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अल्लाह के नामों की खूबसूरती है, मैं करीब। फिर आप लफ्ज़ देख रहे हैं, करीब आ रहा है, अल करीब नहीं है, इसमें भी एक खूबसूरती है। अल करीब अगर होता तो क्या होता, खास लोगों के करीब हो। यानी अल हटा के नकरा फॉर्म में इसको रखकर अल्लाह ताला ने खासो आम के लिए कर दिया। तो वही बात जो शुरू में बता दी आपको, हर एक के करीब है, इवन कुफर पे, निफाक पे, फिसक पे जीने वालों के भी अल्लाह करीब है, और मजलूम के तो वो बड़ा ही करीब है। अल्लाह के नबी सल्लम के पास एक काले रंग की माई, बूढ़ी औरत आई और बेघर थी, कहने लगी मेरे लिए ठिकाना कोई नहीं है, एक तो कलमा पढ़ा और दूसरा फिर अल्लाह के नबी ने उसके लिए एक चबूतरा बनवा दिया, एक छोटा सा खेमा सा मस्जिद नबी के कोने में। वो वहाँ रहने लग गई, टेक केयर करती, कुछ सफाई सुथराई करती, इसी तरह उसको वहाँ से कुछ खाना पानी मिल जाता। फारिग वक्त में वो अज़वाजे मुतहरात के पास आकर बैठती हुजरात में, वो छोटे छोटे हुजरे जिनका जिक्र कुरान में अल्लाह ने 26वें बारे में किया, एक सूरत बना दी। हमारे बड़े बड़े महल और शातों और हमारे कैसल्स का वो अल्लाह को दर्जा नहीं लगता जो छोटे छोटे हुजरात थे, क्योंकि वहाँ दिन रात अल्लाह का नाम पढ़ा जाता था। वज़कुरना का लफ्ज़ है, आप सूरह अहज़ाब में पढ़ कर आए हैं 22वें पारे के शुरू में, कि दिन रात जो तुम्हारे घर में आयते आती हैं, तुम भी इसको ज़रा दोहराया करो। खैर, वो आके अजवाज मुतहरात के पास बैठ जाती। तो ये जो वाक़ आपको सुना रही है ना, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से हमें पहुँचा है। कहती है कि वो औरत कभी कभी एक शेर पढ़ती थी और बड़ी आहोजारी का उसका अंदाज, बड़ा जैसे इमोशनल होता है ना बंदा, सेंटिमेंटल। वो शेर कुछ इस किस्म का था कि वो हार की चोरी का दिन मेरे रब की रहमतों का एक अजीब मजहर था, जो मुझे कुफर के अंधेरों से निकाल कर इस्लाम के नूर में ले आया। तो आयशा कहती है कि हम उनसे पूछते कि अम्मा ये क्या वाकया था, ये क्या हार था। उस पर फिर उस अम्मा ने वो कहानी सुनाई, जो अगर आपको मैं चंद जुमलों में बता दूं तो आपको फ़ैनी करीब के बारे में पता चल जाएगा। कहने लगी कि फलां एक कबीला है मदीना से नवाही इलाके में, यानी सबर्ब्स में, मदीना के करीब देहाती इलाके में एक कबीले के साथ ये औरत रहती थी और ग़ुलाम थी, लौंडी थी। अब लौंडी की क्या औकात होगी, लेकिन थी पुरानी। इतने में क्या हुआ कि वो जो कबीला था उसका सरदार या फिर उसकी बेटी, किसी का भी कोई हार चोरी हो गया। और आपने देखा हो अगर कहीं डॉक्यूमेंट्रीज में कि कबायली लोग चमड़े के बने हुए जेवरात पहनते हैं, उसने कहीं उतार के रखा नहाने के लिए, जब गई तो हार गायब हो गया। जब हार गायब हो गया तो तलाशी ली गई, इल्ज़ाम लगा तो इसी पे लगा, क्योंकि अमूमन ऐसे वक्तों में घर के मुलाजमों पे लगता। बावजूद इसके कि उनका इस औरत पे ट्रस्ट था, एतमाद था, उन्होंने इस औरत की तलाशी ली। हदीस में आता कि उन्होंने इसके खुफिया हिस्सों की भी तलाशी ले ली, जबकि इस औरत ने चोरी नहीं की थी। ये कहती है कि मेरा दिल खट्टा हो गया, दिल टूट नहीं जाता जैसे। इसने चुपके से किसी हस्ती को पुकारा। देखिए, एक पायलट फ्लेम अल्लाह के वजूद का हर एक के दिल में, चाहे कुफर पे कोई ना हो। कहने लगी कि ऊपर वाले अगर तू है तो मेरी बेगुनाही साबित कर दे, तुझे पता मैं झूठी नहीं हूँ, और मुझे एक दफ़ा इनसे बेगुनाह कर दे, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। अभी इस औरत की ये बातें अल करीब से चल ही रही हैं, सारा कबीला बाहर है खुले मैदान में, ऊपर से एक चील, उकाब, ईगल, कोई भी कह ले, आई और चोंच में वही हार था, सबके सामने मैदान में फेंक गई। अल्लाह हु अकबर, सब ने देख लिया खुली आंखों से, समझ गए कि ओहो ये तो उकाब ले गई थी, गोश्त का टुकड़ा समझा होगा, अब कहीं भी फेंक जाती। लेकिन वह इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं करीब हूँ। अब तो शर्मिंदा हो गए सारे, क्योंकि वो इसको बुरा भला कह चुके थे। कहने लगे मैं माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसने कहा देखो, जो होना था हो गया, अगर आप कुछ मेरे साथ अच्छा करना चाहते हो तो मेरे पे एक एहसान करो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जब दिल ख़राब होता है ना बंदा यही सोचता है, हालांकि दिल ठीक कर लेना चाहिए छोड़ने की बजाय। दिल ठीक कर लेंगे तो आपको फिर वो सब अच्छे लगेंगे, एक दो दिन ना लगेंगे बाद में अच्छे लगेंगे। खैर, उन्हें कहा हाँ हाँ जाओ जाओ, शर्मिंदा तो पहले ही थे, कहा जाओ तुम आज़ाद हो। और ये औरत कहती है कि मैं अपना सामान गट्ठड़ में बांध कर उस बस्ती से निकली, मुझे नहीं पता मैं किधर जाऊँ, कोई था ही नहीं। इतने में ये गुजरती गुजारती मदीना शहर में आ गई और वहाँ मस्जिद नबी देखी, और अल्लाह ने इसके दिल पर इस्लाम की शाइन डाली, अल्लाह के नबी ने इसको रहने की जगह दी, ये मुसलमान हो गई। और आपको पता है कि ये औरत कितनी खुशकिस्मत ठहरी, एक तो अजवाजे मुतहरात का साथ मिल गया, मस्जिद नबी की खादिमा खास बन गई। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लम सुबह में जब तशरीफ लाए, कोई अनयूजुअल चीज़ देखी, पूछा क्या हुआ, कहा अल्लाह के नबी वो काली औरत का रात को इंतकाल हो गया। अच्छा क्या हुआ, फिर किधर है, कहा कुछ नहीं, बस हमने उसको गुसल दिलवा कर उसको दफन करा, जाके जनाजा पढ़ दिया उसका। आपको एकदम बुरा लगा, आपने कहा दल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे उसकी कब्र की दलालत दो, यानी आपने बुरा मनाया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और साहबा ने सोचा होगा कि आपको अब कहाँ डिस्टर्ब करें, आप थके हारे आराम फरमाए। उस दौर में इतना थोड़ी था कि उसको भी आना है इसको भी आना है, और तीन तीन दिन तक कभी डेड बॉडीज पुरानी होनी है, जिंदगी और मौत साहबा के लिए बड़ी नॉर्मल थी। हमारे लिए दोनों ही चीज़ें एक फितना बन गया। बच्चे का दुनिया में आना क्या है, नानी दादी के दीन कुरान से दूर होना बन गया। कभी माँ का तो बनता ही है कि जी बच्चा हो गया। हमारे जीने से लेके मरने तक मेरा लिए 101 रस्में हैं जो मैं हर मौके पे फिर अल करीब से ही दूर करती हैं। इल्ला माशाल्लाह दफन कर दिया। आपने कहा किधर है, फिर आप उसकी कब्र पे गए, फिर आपने वहां खड़े होकर उसके लिए दुआ मगफरत की। तो ये है जी अल करीब। व इज़ा सअला कई बात यन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादान फल यस्तजीबु ली वल युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। तुम भी तो मेरी सुनो। फिर इसी तरह से ये जो बात है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूछा था कि हमारा रब दूर है या करीब है, दूर है तो ज़रा ऊंची बुलाएं, करीब है तो आहिस्ता पुकारें, तो अल्लाह ने इधर बता दिया कि मैं करीब हूँ। फिर आप देखिए कि इसमें एक हकीकत भी छुपी हुई है, और वो क्या है कि अल्लाह ताला से कुर्ब और बोध का इन्हिसार बंदे के अपने दिल की हालत पे है। अगर बंदा अल्लाह से गाफिल और बेपरवाह रहे तो इससे ज़्यादा दूर कोई चीज़ भी नहीं है। ये भी लिख लें जुमला। अगर आपको अल्लाह से प्यार नहीं है ना तो आपके लिए बड़ा दूर है वो, लेकिन अगर वो खुद अल्लाह की तरफ मुतवज्जेह रहे, इसकी याद से अपने दिल को मामूर रखे, इसकी नेमतों पे इसका शुक्र गुजार रहे और इसकी आजमाइशों में सब्र और इस्तकामत तलब करे और इसके लिए फिर इसी के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब बंदे से कोई नहीं है, बल्कि वो तो शाहरख से भी ज़्यादा करीब है। जी शाहरख से भी ज़्यादा करीब है अल्लाह ताला बंदे की। सूरत हदीद की आयत 4 में आता है वहुआ माँ को मई नमा कुन तुम वल्लाहु बिमा तामलू न बसीर। वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो, जो काम भी करते हो इसे वो देख रहा है। और रगे जान से करीब कैसे है, सूरत क़ाफ़ आयत 16 वलकद खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इंसान को पैदा किया है और इसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं, हम इसकी रगे गर्दन से भी ज्यादा इससे करीब हैं। ये जो हबलिल वरीद होती है ना, वरीद अरबी में इसको कहते हैं रगे, रग ट्यूब्स कह लें, इंटेस्टाइन्स कह लें। ये वो मेन आर्टरी है जहां से आंख कान जुबान हर चीज का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये वही है जिसको काट दे कोई तो बंदा मर जाता है, दिमाग के साथ जुड़ा हुआ ताल्लुक। यानी इस एक लफ्ज़ से अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारी दिल में क्या ख्याल आएगा, तुम्हारी आंख क्या देखेगी, तुम्हारे कान क्या सुनेंगे, तुम्हारी जुबान क्या बोलेगी। ना ना अकरब, और यहां देखिए लफ्ज आया अकरब, वहां करीब है ना, यहाँ अल्लाह के कलाम पे कुर्बान जाने को देखा था। ये है अकरब का लफ्ज जो मैंने शुरू में बताया ना, टू मच क्लोज होना। यहाँ लफ्ज करीब नहीं आना था कि ना ना करीब वो लई ही, अकरब मीन उसके अटैचमेंट यानी उसकी क्लोजनेस की तरफ इशारा है कि हम उससे बहुत करीब हैं। तो क्या पता चला कि अल करीब आपका मेरा रब करीब ही कह ले तो भी बहुत है। और आप जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के इस नाम पे गौर करेंगे ना, तो आपके दिल में उसका कुर्ब पाने का शौक आएगा। लोगों ने आज अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए न जाने क्या कुछ खेल तमाशे शुरू कर दिए, मसनून और गैर मसनून आमाल का मजमुआ। कोई ढोल पीट के कहता है अल्लाह का कुर्ब चाहिए, कोई तालियां पीट के अल्लाह का कुर्ब चाहता है, कोई राह लगाकर आवाज़ों में, और कोई म्यूजिक से भरी हुई नातों और इसी तरह से हमद में अल्लाह का कुर्ब पाता है। आसान सा तरीका उसने खुद ही बता दिया है सूरत अलक की आयत 19 में वसजुद वक्तरिब। यहाँ देख रहे हैं बाब इफ्तियाल में आ गया, ये इक्तराब इफ्तियाल, इसमें और शिद्दत होती है। जहां ते लग जाएगी ना असल रूट के अंदर, वहां जरूर शिद्दत आ जाएगी। तो अल करीब का कुर्ब हासिल करने का आसान तरीका सजदा करो और अपने रब का कुर्ब हासिल करो। ये तो कुरान में आता है ना, हदीस में भी आपने एक वाक्य पढ़ा हुआ है। अल्लाह के नबी के पास सहाबी आते हैं, रबी असलमी उनका नाम आता है, कहने लगे अल्लाह के नबी जन्नत में आपकी मुराफकत चाहता हूँ, कुर्ब चाहता हूँ आपका। असल में अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा था कि मांगो कुछ, बड़ा प्यार आया आपको अपने साथी पे, खिदमत करते थे आपकी, पानी वजू का रखने के लिए रात को आपके घर के बाहर बैठ जाते थे। तो एक दिन आपने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। कहा अल्लाह के नबी आपका कुर्ब मिल जाए, जन्नत में आपका साथ चाहिए। कहा और कुछ। कहा हुआ जाक, बस यही चाहिए। कहा अच्छा ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और तुम क्या करना, तुम सजदों की कसरत से मेरी दुआ की कबूलियत की कोशिश करना। तो सजदे में अल करीब का कुर्ब मिलता है। कैसे? आप खड़े होके देखिए, जरा सीधे खड़े हो, सामने नजरें दौड़ाएं, सारा कमरा दिख रहा है आपको। आप थोड़ा सा सर ऊपर करें, छत दिखेगी, और ऊपर करें। एक वक्त आएगा जब आपकी निगाहें ऊपर होंगी, आप थक जाएंगे, आपकी गर्दन थक जाएगी, ज्यादा देर आप ऊपर नहीं देख सकेंगे। अब आप दोबारा वापस आइए, सीधे है ना, थोड़ी सी गर्दन झुकाइए, फिर थोड़ी सी बैक झुकाइए, रुकू पाँव तो दिख ही रहे होते हैं ना रुकू में, और आप नीचे जाइए सजदे में। तो कोई नहीं है आपके और उसके बीच में, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, और जब कोई दूसरा भी होता है ना तभी तुम मेरे पास होते। तो सजदे में बाहर के सारे सहारे टूट जाते हैं, अल्लाह का कुर्ब सजदों से मिलता है। और अल करीब वो है कि जब एक बंदा दुनिया से जा रहा होता है ना, तो अल करीब उस मरने वाले के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये कहाँ लिखा है? सूरत वाकिया की आयत 85। वनाहनु अक्रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। इस वक्त तुम्हारी बनिस्बत हम इसके ज्यादा करीब होते हैं मगर तुमको नजर नहीं आते। अब वो अल्लाह हैं, वो फरिश्ते हैं, हम नहीं जानते। सीधी सीधी आए तो ये कि तो हम करीब ही होते हैं मरने वाले के। अब इससे मुराद के फरिश्ते भी है, लेकिन अल्लाह ने नहनु अक्रब की बात कर दी, यानी अल्लाह की वो मदद है, अल्लाह का इल्म है, वो क्या है बंदा इसको जानता। इसी तरह से जब आप इस नाम को अहदीस की रोशनी में देखते हैं ना, तो सही बुखारी की रिवायत है 7537, अबू हुरैरा रावी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा मुझसे एक बालिश्त करीब होता है तो मैं इसे एक हाथ करीब हो जाता हूँ, और जब वो एक हाथ करीब होता है तो मैं इसे दो हाथ करीब होता हूँ। और हदीस तवील है। फिर वो मेरी तरफ चल के आता है, मैं दौड़ के आता हूँ, वो एक हाथ आता है, मैं उसके लिए एक ज़रा आ जाता हूँ। मुराद यह है कि जितनी तुम्हारी चाहत है उतनी मेरी भी है। फिर अबू हुरैरा ही से रिवायत है रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने फरमाया, बंदा सजदे में अपने परवरदिगार से बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तो सजदे में बहुत दुआ किया करो। सही मुस्लिम की रिवायत है 1083। लंबे सजदे किया करें। हमारी तो मसरूफियत इतनी बढ़ गई, अभी पूरा नीचे गए नहीं होते तो ऊपर उठ जाते, और अभी कमर सीधी नहीं हुई होती तो दोबारा सजदे में। ये पसंदीदा अमल नहीं है, इससे एक इंसान को बचना चाहिए। हत्ता यकीम ज़हरहू के लफ्ज़ हैं हदीस में। सजदा कीजिए सुकून से, कोनियाँ नीचे नहीं लगानी, सात हड्डियों पर सजदा कीजिए, और हाथों का प्याला सा बना के उसके ऊपर मुंह भी नहीं रख लेना, और बहुत चौड़े बगले खोल कर भी सजदा नहीं करना। बस आपके चेहरे के इर्द गिर्द दोनों आपके हाथ ऐसे आए कि आपको बाहर कुछ भी ना दिखे, और फिर मांगिए, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमति कस्तगीस, ए जिंदा है थामने वाले तेरी रहमत की मैं उम्मीदवार हूँ। फिर अब सुनन नबी दाऊद की रिवायत है 1329, अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बाहर निकले तो देखा कि अबू बकर नमाज पढ़ रहे हैं और पस्त आवाज़ से किरत कर रहे हैं। फिर आप हजरत उमर के पास से गुजरे तो वो बुलंद आवाज से नमाज पढ़ रहे थे। जब ये दोनों आपके पास आए, यानी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो आपने फरमाया कि अबू बकर, मैं तुम्हारे पास से गुजरा और देखा कि तुम धीमी आवाज से नमाज पढ़ रहे हो, मतलब वजह क्या थी? आपने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, मैंने उसको सुना दिया है जिससे मैं सरगोशी कर रहा था, यानी मेरी धीमी आवाज़ भी अल करीब ने सुन ली। फिर आपने हजरत उमर से कहा कि मैं तुम्हारे पास से गुजरा और तुम बुलंद आवाज से नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल, मैं सोते को जगाता और शैतान को भगाता हूँ। उमर में जोश था ना, अल्लाह अकबर। और इसी तरह आपको होता है कि बंदे के करीब सबसे ज्यादा अल्लाह कब होता है, तो सुनन निसाई की रिवायत है 3006, यौम अरफा में अल्लाह बंदों के करीब होता है। जी, यौम अरफा और अल्लाह का कुर्ब। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल अरफे के दिन जितने गुलाम और लौंडियाँ जहन्नुम से आज़ाद करता है इतना किसी और दिन नहीं करता। इस दिन वो अपने बंदों से करीब होता है और इनके ज़रिए फरिश्तों पर फ़ख्र करता है और पूछता है, ये लोग क्या चाहते हैं? सुभान अल्लाह। तो क्या पता चला कि अल करीब के साथ आपका मेरा ताल्लुक अगर जुड़ जाए, दुनिया की कोई चीज़ फिर पीछे नहीं रहेगी। फिर एक सवाल पैदा होता है कि हम और किस तरीके से अल्लाह का कुर्ब ले सकते हैं? तो फिर اچھے کاموں سے، صدقے سے، خیرات سے، لوگوں کے حقوق پورے کر کے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے، اور اگر موعظت الحسنہ دیکھنا چاہیں، الموعظت الحسنہ اس نام سے متعلق، تو سب سے پہلی تو بات ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کا قرب پانا بندے کی معراج ہے، پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کا قرب پانا ہے. جی، جتنا اللہ اپنے حقوق ادا ہوتا دیکھ کر بندے کے قریب ہوتا ہے نا، اتنا بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے دیکھ کر بھی. بندوں کو پیچھے ڈال کر اللہ کا قرب نہیں مل سکتا. اور اپنے ہر رشتے میں خود کو پوچھئے، ہم تو کسی ایک ہی جگہ پریشان ہو جائیں گے، واللہ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، پتہ نہیں ہم کہاں پڑے میں. تو الموعظت الحسنہ پہ چلیے اور سوچئے کہ جب میں نے اللہ کا قرب پانا ہے تو مجھے اس وقت کیسے اللہ کے قرب کو پانا ہے، اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا کر کے. پھر فرض نمازوں کے قیام کے ساتھ نوافل کی کثرت سے. قرب تو فرض نمازوں سے مل جاتا ہے، لیکن ایکسٹرا محنت کریں گے نا نوافل کی صورت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ قرب دے گا. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ وہ کام بھی کرتے جو کسی نے آپ کو کہا، کوئی اسائن کیا، اور کبھی اس سے بڑھ کر ایکسٹرا بھی کچھ کر آتے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چونگا 12 کی بجائے 13 دے دیجئے درجن میں، یہ جو ایکسٹرا چیز ہے نا، یہ اگلے کے دل میں آپ کی جگہ بنائے گی. پھر نیک لوگوں کی صحبت سے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، قرآن اس کی دلیل دیتا ہے. پھر قرآن سے ایک اور چیز پتہ چلتی کہ مال اور اولاد مقرب نہیں بناتے بلکہ نیک اعمال بناتے ہیں. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات. اللہ کہتا ہے باقی رہنے والی نیکیاں وہ ہیں اصل میں. پھر اسی طرح گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے رستوں میں بھاگ دوڑ کرنے سے پھر اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. حضرت زکریہ اور ان کی بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ دونوں کون تھے؟ یسارعون فی الخیرات. پھر اللہ نے ان کو یحییٰ جیسے بچے کی خوشخبری دے دی. تو گناہوں میں بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا لانا، لعنت، بود ہے یہ، دوری لکھ لے، بلکہ غلط کام کر کے بود ملتا ہے، لعنت ملتی ہے، رحمتوں سے دوری، اور اچھے کام کر کے قرب ملتا ہے، اللہ سے محبت ملتی ہے. اور پھر آخرت میں اللہ کا قرب پانے کی دعائیں کرنی ہے. حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اے رب، اپنے بالکل قریب میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. کبھی آپ نے سوچا؟ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. تو فزیکلی بھی کچھ لوگ جنت میں اللہ کے قریب رکھے جائیں گے. آپ دیکھیے جیسے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں نا، مثلاً سیکرٹری، وی آئی 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 پیس، آپ ذرا سا سوچیں گے نا تو اللہ کا قرب جس کو مل گیا وہ تو وی آئی پیس میں چلا گیا. اور جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے انشاءاللہ اللہ کا قرب پانا ہے. پھر اسی طرح سے گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا آپ نے، ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی. بندے کے پاس سے گناہوں کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں. تو فرشتے دور ہو جائیں تو اللہ قریب رہے گا. پھر زیادتی نہیں کرنی کسی پہ، ظلم نہیں کرنا، کسی کی آہ نہیں لینی، کسی کی بد دعا نہیں لینی، کیونکہ القریب آپ کو اپنا قرب تب دے گا جب آپ اس کے قریب ہونا چاہیں گے. آپ دیکھیے بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے نا، ماں بھی بڑے بھی گھر والے بلائے نا، قریب سے قریب آتا جاتا ہے. ذرا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو کھچتا ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں بچے. شاید ان کو کھیلنا ہوتا ہے اور ہم نے ان کے گال کو پکڑ کے یوں چپ چپ کرنا ہوتا ہے، تکلیف دیتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام کسی مثال کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی دعائیں مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.